नमस्कार साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से दिनकर पातुकर आज हमारे साथ छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के मंच पर संयुक्त रूप से एक साथ रूबरू होने जा रहे जनपद सदस्य संदीप जी भकने, साथ ही डॉक्टर अनूप सिंह जी एवं सेवानिवृत्त प्रधान पाठक माननीय अशोक डोंगले सर जी। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े है मध्य प्रदेश मोबाइल वाणी के प्रदेश समन्वयक अशोक जी शर्मा और हमारे कम्युनिटी रिपोर्टर योगेश जी गौतम। नमस्कार सर जी, आप सभी लोगों को
नमस्कार।
मैं आज छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के मंच पर पिछले 15 दिनों से जो मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम के तहत संदीप जी भकने से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। नमस्कार भकने जी।
नमस्कार दिनकर जी।
जैसा कि अभी पिछले 15 दिनों से छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर सिविल अस्पताल काउंसिल को कोविड सेंटर घोषित करने की बात सभी लोगों के माध्यम से और सहयोग से चलाई गई, जिसमें संकेत मिले है कि सिविल अस्पतालों को ऑक्सीजन युक्त बेड बनाने की बात चल रही है, जिसके संकेत जिला प्रशासन के माध्यम से मिले। इसको आप किस नजरिए से देखें?
ये मांग अत्यंत आवश्यक थी। सौतर ब्लॉक, हर ब्लॉक में, मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक में एक मुख्यालय पे बड़ा शासकीय अस्पताल होता है। आज जो महामारी इतनी विकराल रूप धारण कर चुकी है, तो मध्य प्रदेश शासन ने महीना भर पूर्व ही हर ब्लॉक के एक एक बड़े अस्पताल को कोविड सेंटर घोषित करना चाहिए था। और उसमें जो जरूरत की चीजें है, जैसे ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, आईसीयू है, और फेविप्लू है, जो इंजेक्शन है, ये सारी चीज की, और एक मेडिसिन डॉक्टर स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर की अपॉइंट करके रखना चाहिए था। ये आवश्यकता तो एक माह पूर्व की थी। यदि एक माह पूर्व ये व्यवस्था हर ब्लॉक में हो जाती तो आज इतना भयंकर विकराल रूप धारण नहीं करती है बीमारी।
15 दिन जो जिला पंचायत, जिला प्रशासन के माध्यम से अभी जो संकेत मिले सिविल अस्पताल को ऑक्सीजन युक्त बनाने के और वो संसद को अच्छी बेड बनाने की बात की गई, इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे?
हम लोगों ने, मैंने मोबाइल वाणी के माध्यम से विगत 15 दिनों से ये मांग उठाई थी, और विभिन्न राजनीतिक दलों के और समाज के भी लोगों ने भी, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने एक मांग उठाई थी, प्रशासन शासन के सामने एक मांग रखी थी कि यहाँ मुख्यालय पे एक कोविड सेंटर होना चाहिए, 100 बिस्तर का एक सेंटर होना चाहिए, ताकि यहाँ मरीजों को अत्याधुनिक सुविधा, सीटी स्कैन की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, अच्छी सुविधा यहाँ अच्छे डॉक्टरों से मिले, ये मांग हमने उठाई। और विगत 15 दिन पूर्व से हम मोबाइल वाणी के माध्यम से इस मांग को भी उठा रहे हैं, आपको ज्ञात है। आज केवल कलेक्टर कल आए थे, उन्होंने 2-3 ब्लॉकों का दौरा किया और वहाँ उन्होंने ऑक्सीजन युक्त बेड बनाए। ऑक्सीजन युक्त बेड बनाने से ही काम नहीं चलेगा, वहाँ एक आईसीयू की व्यवस्था होनी चाहिए, इंजेक्शन और फेविप्लू जो रेमडेसिविर इंजेक्शन एक अत्यंत आवश्यक है, वो दवाइयाँ उपलब्ध होना चाहिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की व्यवस्था होना चाहिए। और एक खास बात, आज गांव में कोरोना इतना भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया कि गांव से आने जाने की सुविधा लोगों को नहीं होती, मरीजों को कोई गाड़ी के प्राइवेट टैक्सी वाले लाने को नहीं देखते, इसलिए 108 की मुहिम और एम्बुलेंस की व्यवस्था ये भी कलेक्टर बात है और शासन प्रशासन की ओर से होनी चाहिए।
यह थे संदीप जी भकने, जिन्होंने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के माध्यम से संसद सिविल अस्पताल को कोविड अस्पताल में परिवर्तित करने की मांग की थी। हमारे साथ सेवानिवृत्त प्रधान पाठक अशोक डोंगरे जी भी जुड़े। नमस्कार सर जी।
नमस्कार। नमस्कार।
जैसा कि सर आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से रूबरू होते हुए एक मांग उठाई थी कि आपातकालीन स्थिति में शासन अधिग्रहण की बात करता है, तो जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में कदम उठाया गया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1887 में प्रदेश शक्तियों के अंतर्गत संचालित ऑक्सीजन प्लांट को लेकर जिला प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं, तो इस संबंध में आपके क्या विचार है?
जी, मैं इस संबंध में पिछले मोबाइल वाणी पर भी आपको बता चुका हूँ, और ये संदेश शायद शासन तक पहुँचा है मोबाइल वाणी से, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए विभिन्न जो कारखाने स्थापित किए गए हैं उनको स्वीकृति दी चुकी है। अपने बोरगांव में भी जो एक कारखाना है उसको भी चालू करने के लिए सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केवल ऑक्सीजन के चालू करने से नहीं होना है, ये जो आवश्यक रूप से जो दवाइयाँ, इंजेक्शन और वेंटिलेशन वगैरह जो होते हैं उसकी भी भरपूर मात्रा में पूर्ति होनी चाहिए, तब कहीं इस कोरोना को काबू में किया जा सकता है। पिछली बार की मोबाइल वाणी पर मैंने अपने वार्तालाप में ये कहा था कि आवश्यक सेवा संधारण के अंतर्गत जिसमें एस्मा कहते हैं ये शासन के द्वारा लगाया जाकर प्राइवेट अस्पतालों की सेवाओं से भी अपने अधीन कर लेना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमारी ये वार्ता 14 अप्रैल को हुई थी और उसके ठीक 2-3 दिन के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये इस प्रकार की सेवाओं को लागू कर दिया गया है। इस पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा दिनकर जी कि
बोले सर जी
एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक उपचार भी बहुत मायने रखता है। आयुर्वेदिक के रूप में हमारे नागपुर में प्रज्ञा मेहरा जो MD गोल्ड मेडलिस्ट है इनके द्वारा जो औषधि दी जा रही आयुर्वेदिक के रूप में वहाँ 50,000 लोगों को इसका लाभ मिल चुका है और ये प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा था। पता नहीं क्यों वहाँ शासन के द्वारा या राजनीतिक स्टंट के द्वारा उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है जबकि उनके द्वारा जो पेशेंट दुरुस्त हुए हैं उनके वार्तालाप में उनकी चर्चा में यही साबित हुआ कि हमें 3-4 दिन के बाद हम वेंटिलेशन से वापस हुए पेशेंट है और हमको 3-4 दिन के दवा लेने के बाद इस आयुर्वेदिक औषधि द्वारा काढ़ा द्वारा हम दुरुस्त हो रहे हैं। तो वहाँ जनता की मांग भी भरपूर उठ रही है नागपुर में उस मेश्राम मैडम के लिए। तो मैं ये चाहूंगा जो हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं जो हमारा महंगा इलाज नहीं कर सकते क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तो बेड भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे तो ऐसी स्थिति में वो नागपुर से आयुर्वेदिक काढ़े वाला इलाज कराकर और स्वस्थ दुरुस्त हुए ये कामना के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ।
जिन्होंने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के माध्यम से अपनी मांग शासन प्रशासन तक पहुंचाई थी हमारे साथ डॉक्टर अनुप सर भी जुड़े हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब।
नमस्कार दिनकर दादा।
ये जो शासन द्वारा सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड की जो बात कही जा रही 80 बेड की और इधर ऑक्सीजन की भी मात्रा भरपूर छिंदवाड़ा जिले में बताई जा रही है और पिछले कई दिनों से आप छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हो तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे?
सबसे पहले तो आज जो पैनल में हमारे साथी जुड़े हुए संदीप भक्ने साहब अशोक डोंगरे सर अशोक श्रीवास्तव सर और आप मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और नमस्कार बोलता हूँ। अभी जो ये कदम उठाया गया है जिले के माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा ठीक है जब जगे तब सवेरा अच्छा है लेकिन आदरणीय कलेक्टर महोदय बहुत देर कर चुके हैं। जब जरूरत थी उन्होंने कदम नहीं उठाए सिर्फ उन्होंने कोरम पूरा किए और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोबाइल वाणी और मोबाइल वाणी से उपस्थित तमाम पैनलिस्टों को संदीप साहब को अशोक डोंगरे सर को कि लगातार इन्होंने जुड़ करके अपनी मांग को और इस सेवा भावना को उठाने का काम किया है। दादा आपको याद होगा कि लगभग हम लोग 2 महीना पहले इसी मोबाइल वाणी पे इसी के संबंध में चर्चा किए थे कि हम सौसर वालों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे सौसर में बहुत बड़ा अस्पताल है लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि हमारे सौसर में कोविड सेंटर उस समय नहीं खुले गए थे। दूसरी बात की सौसर में उस समय तक MD डॉक्टर नहीं थे आज आए होंगे कि नहीं आए होंगे हमको नहीं पता है। तीसरी बात कि आज तक वो अस्पताल में कोई सर्जन की व्यवस्था नहीं की गई थी अभी है कि नहीं ये भी हमको नहीं पता है क्योंकि लगभग 2 महीना से उधर हमारा जाना नहीं हो पाया है। तो ये हम सौसर वालों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि हमारे पास एक बहुत बड़ा अस्पताल था कहीं कहीं पर भी व्यवस्था नहीं थी लेकिन जो प्रशासनिक स्तर पे कोरोना को रोकने के लिए व्यवस्था छिंदवाड़ा में होना चाहिए उस स्तर पे छिंदवाड़ा की प्रशासन पूरी तरीके से फेल्योर रही। नहीं तो पिछले आप कोरोना के काल को उठा करके देखिए 2020 का उसमें हमारा सौसर और छिंदवाड़ा सेफ जोन में था वो ग्रीन जोन में आता था रेड जोन में नहीं आता था लेकिन जो लॉकडाउन खुला 2020 के बाद उसके बाद से लेकर के फरवरी 2021 तक जिले के प्रशासन ने कुछ करने का काम नहीं किया न मास्क की व्यवस्था कराई न मास्क चेकिंग की व्यवस्था की न ही लोगों को जागरूकता किए और न ही लोगों में कोरोना के प्रति कोई जन जागरूकता अभियान चलाने का काम किए पूरे तरीके से सोए थे। खैर ठीक है जब जगह सवेरा लेकिन अभी बहुत लेट हो कर चुके हैं और अभी भी जरूरत है कि पूरी तत्परता से इस बात को ध्यान दें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना आज गाँव गाँव तक फैला है साधन नहीं है हमारे संदीप साहब बोल रहे थे कि साधन नहीं है ठीक है लेकिन प्रशासन को यह चाहिए कि जो कोरोना का फर्स्ट रूल से जांच का जैसे थर्मल स्कैनिंग वगैरह जांच की जो व्यवस्था अगर वो हर पंचायत हर नगर पालिका तक पहुंचा देते हैं तो गांव के लोगों को दिक्कत नहीं होगी और वो स्वतः अपना वहां पे चेक करा करके इलाज करा करके ठीक हो सकते हैं और स्वतः क्वारंटाइन हो जाएंगे लेकिन शासन प्रशासन ये व्यवस्था नहीं कर रहे उनको करना चाहिए। दूसरी बात जो मैं थोड़ा सा इससे अलग चल करके जोड़ना चाहता हूँ थोड़ा, कि शासन प्रशासन कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से नाइट कर्फ्यू और ब्रेक द चेन की बात कर रहे हैं, लगाए हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, तो सिर्फ बॉर्डर बंद कर देने से व्यवस्था नहीं रुकी। आप बॉर्डर बंद किए और बड़े बड़े कंपनियों को छूट दिए। आदरणीय कलेक्टर महोदय और सोशल के एसडीएम महोदय से हमारे एक साथी है दीपक सिंह, उन्होंने फोन पे बात किए थे कि भाई लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और आप रेमंड वालों को छूट दिए, तो उन्होंने कहे कि रेमंड कंपनी के लोग हमारे हैं, बाकी लोगों से हमको कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी प्रशासन की एक उदासीनता है कि आम लोगों को परेशान किया जा रहा है और बड़ी बड़ी सिंघानिया के लोगों को छोड़ा जा रहा है, दिन रात आकर के जाकर के काम करे, कहीं ना कहीं वो भी नाकी रो बाहर जा रहे, तो उनकी वजह से भी कोरोना फैल सकता है। हम ये नहीं कर रहे कि फैल रहा है, लेकिन फैल सकता है, तो उनको इस बात पर भी ध्यान लगाना चाहिए। और मोबाइल वाणी लगातार जो सकारात्मक काम कर रही है इस बातों को लेकर के, यह लगातार चलते रहना चाहिए ताकि लोगों में एक जन जागरूकता आ जाए। तीसरी जो बात है कि आज जो भय का वातावरण पैदा कर दिया गया है, खूब भयावह स्थिति पैदा की गई, डरा दिया गया है, उस डर को समाप्त करना है। और मैं तो कहूंगा कि मोबाइल वाणी इस डर को समाप्त करने के लिए भी एक पहल चलाए। और चौथी जो बात है हम लोगों की, हम लोग शुरू से मांग करते आए, हम लोगों के नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और उसके बाद लगातार इस मांग को लेकर के रघु ठाकुर जी लड़ रहे, हमने हम लगभग उनके साथ 10 रैलियों में गए दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक। हम लोगों ने शुरू से मांग की कि चिकित्सा को मौलिक अधिकार में डाला जाए। अगर चिकित्सा को मौलिक अधिकार में डाल दिया गया होता तो ये नौबत नहीं आती। आज आप देख लीजिए कि एक पेशेंट ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहा है, बेड के अभाव में दम तोड़ रहा है, एम्बुलेंस के अभाव में दम तोड़ रहा है, और हमारे देश के जो जनप्रतिनिधि है, बड़े बड़े नेता जो है हवाई जहाजों की यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा दिक्कत नहीं होगी। जो अगली बात है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन चल रहा है उसकी कालाबाजारी जम करके चल रही है, उसका कारण है कि जब देश के जो प्रतिनिधि है चुने हुए संसद विधायक जो भी जनप्रतिनिधि है, ये अपने कार्यों से अपने आप को अलग कर लिए और देश पूरी तरीके से नौकरशाहों के हाथ में चला गया। जब भी देश नौकरशाहों के हाथ में जाता है देश के अंदर कालाबाजारी बढ़ती है, तो जरूरत है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है विधायक है संसद है वो अपनी भूमिका निभाए और प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि चिकित्सा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाले ताकि इस व्यवस्था को सुधारा जा सके।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण बातों को पकड़ डाला। हमारे साथ प्रदेश समन्वयक शर्मा जी भी जुड़े और हमारे कम्युनिटी रिपोर्टर योगेश गौतम भी जुड़े। योगेश जी आप कुछ कहना चाहोगे?
जी सर, जिस तरीके से मोबाइल वाणी बीते कई दिनों से, चाहे सौसर के सिविल अस्पताल हो, चाहे नागपुर छिंदवाड़ा ट्रेन को बंद करने की मांग हो, जिस तरीके से लोगों द्वारा उठाई जा रही थी, वे भी कुछ हद तक प्रशासन द्वारा इन क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्कैनिंग और क्वारंटाइन इनको 10 दिनों का किया जा रहा है। साथ ही कई लोगों में ये जागरूकता अवेयरनेस देखा गया है कि कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों की जो धारणा थी, जो भय पैदा हो रहा था, उसमें भी कुछ परिवर्तन देखे जा रहे हैं। साथ ही लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता की जो मुहिम है और जो भी मोबाइल वाणी पर जो मुहिम उठाई जा रही थी, उसको शायद शासन प्रशासन और लोगों में एक जागरूकता आई है।
धन्यवाद योगेश जी। अब हमारे साथ प्रदेश समन्वयक माननीय अशोक शर्मा जी जुड़े, हम उनसे भी इस संबंध में मार्गदर्शन चाहेंगे कि वो मोबाइल वाणी के रिपोर्टरों को नए दिशा निर्देश की भी किस तरह से इस अभियान को चलाना है, और हमारे साथ जो साथी जुड़े उनके भी साथ गुफ्तगू हो।
सबसे पहले तो ये इस मुहिम जो आपने इस मोबाइल वाणी के माध्यम से चलाई, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ की कम्युनिटी और जनता के लिए जो सौसर नहीं है अपितु पूरे छिंदवाड़ा के लिए बहुत जरूरी था, तो इसकी मांग उठाई और वहाँ पर कोविड सेंटर बनाने के लिए और ऑक्सीजन युक्त बेड बनाने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय ने पहल की है और ये बड़ी सफलता मोबाइल वाणी की वहां पर देखी जा रही है। निश्चित ही ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, जनपद सदस्य है, श्री संदीप जी हैं, अशोक जी हैं, दिनकर जी हैं, बाकी आप सब लोग साथी हैं, ये आपकी आपकी ही जीत है और आपके इस शौचालय क्षेत्र की जीत है कि आप लोग उस इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद भी वहां पर इतनी सारी संसाधन और सुविधाएं वहां पर इतनी नई देखने को मिल रही थी, जो आज ये प्रयास कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा है। इसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है और इस योगदान में, इस महामारी जैसी स्थिति में देश आप सभी को हमेशा और आपके समुदाय के लोग, सौसर क्षेत्र के लोग हमेशा आपको याद रखें। आप देश के देश में जो इस वक्त महामारी आई है उसमें कहीं ना कहीं आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो आज वेंटिलेटर पर हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जो ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रयास आपके माध्यम से यहाँ देखने को मिल रहा है। मोबाइल वाणी की तरफ से मैं बस यही आप लोगों से कहूंगा कि एक ऐसा माध्यम है जिसका आप अपने ही घर से सरल तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और यहाँ हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और वही आप लोगों ने किया। दिनकर जी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और बाकी सभी साथी का बड़ा बड़ा योगदान है। मैं अशोक शर्मा आप लोगों के साथ हूँ और अभी कोविड का जो कहर पूरे देश में चल रहा है, सुरक्षा और सुरक्षित रहें, दूसरों को भी दूसरों को भी सलाह दें कि मास्क लगाएं और सैनिटाइज करें अपने हाथों को और दो गज की दूरी बनाए रखें। इस मुहिम में आप सभी जुड़े रहे और इस सफलता को हासिल आप लोगों ने किया है, इसके लिए मैं आप लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जैसा कि छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी द्वारा यह मुहिम चलाई गई है और सर ने जो कहा कि पूरे जिले के लिए, तो यह मुहिम संपूर्ण जिले के लिए थी और हमारे एक साथी कम्युनिटी रिपोर्टर राजेश जी तिवारी जिन्होंने अमरवाड़ा में यह मुहिम चलाई और अमरवाड़ा में भी 60 बेड ऑक्सीजन के हॉस्पिटल की बात की गई है। तो छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के माध्यम से अमरवाड़ा में राजेश जी तिवारी द्वारा यह पहल की गई और यहाँ पर आप सभी के सहयोग से यह मुहिम चली और छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर आप सभी लोगों का आगमन एवं रूबरू होने के लिए छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। जय हिंद जय भारत।
धन्यवाद।